समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस है। नृत्य जीवन का उत्सव है। नृत्य एक सशक्त अभिव्यक्ति है जो पृथ्वी और आकाश से संवाद करती है। नृत्य हमारी खुशी, हमारे भय और हमारी आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। नृत्य अमूर्त है, फिर भी जन के मन के संज्ञान और बोध को परिलक्षित करता है। विश्व में असंख्य नृत्य शैलियां हैं, मसलन शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, जाज डांस, डिस्को डांस, स्ट्रीट डांस, फ्लेमेंको डांस आदि। कुछ नृत्य शैलियों पर एक नजर डालते हैं।
आए है आए।
एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी सुभद्रा रामचंद्रन। नमस्कार सुभद्रा।
नमस्कार मनोज। हैप्पी इंटरनेशनल डांस डे टू यू एंड ऑल दोज फोक्स हु लव दिस आर्ट। एंड यू नो, एज यू जस्ट पॉइंटेड आउट, बिसाइड्स प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट, डांसिंग मेक्स यू हैप्पी, कीप्स यू हेल्थी एंड इम्प्रूव्स द एनर्जी लेवल इन द बॉडी along with, of course, your mental alertness. So dance away your care, friends, and keep those blues away too. And now for some entertainment, we go over to you, Manoj. Let's begin with some news headlines. We begin Aaj Savere with some news headlines.
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान जारी है। 7 जिलों में 142 निर्वाचन क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले जा रहे हैं। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस चरण में 3,20,00,000 से अधिक मतदाता हैं। 220 महिलाओं सहित 1,448 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुल 41,001 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 8,845 मतदान केंद्रों का संचालन महिलाएं कर रही हैं। 13 मतदान केंद्रों का दायित्व दिव्यांग जन संभाल रहे हैं। 4,388 बूथों को अत्यधिक संवेदनशील घोषित किया गया है। इन स्थानों पर अतिरिक्त कैमरे और सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। चुनाव आयोग ने यह भी घोषणा की है कि मतदाता पहचान पत्र न रखने वाले मतदाता भी आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन कार्ड या बैंकों और डाकघरों की फोटो युक्त पासबुक जैसे 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करके मतदान कर सकते हैं।
On the second day of his two-day visit to Uttar Pradesh, Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the Ganga Expressway in Hardoi today. The Ganga Expressway is a 594-kilometer-long, 6-lane, access-controlled, greenfield, high-speed corridor. It has been built at an estimated cost of around ₹36,230 crore.
The Ganga Expressway, developed by the Uttar Pradesh Expressway Industrial Development Authority, will connect western, central and eastern regions of Uttar Pradesh through a single high-speed corridor. This will be the longest expressway in the state. It will cut travel time from nearly 12 hours to 6 hours between Meerut and Prayagraj. The expressway will pass through 12 districts: Meerut, Hapur, Bulandshahr, Amroha, Sambhal, Badayun, Shahjahanpur, Hardoi, Unnao, Raibareli, Pratapgarh and Prayagraj. The expressway also features a 3.5-kilometer long airstrip in Shahjahanpur to support emergency takeoff and landing of Indian Air Force aircrafts. The expressway project is also expected to give a boost to multiple sectors including industrial development, trade, agriculture, tourism and generate direct indirect employment opportunities across the region. Om Avasthi, Akashvani News, Hardoi.
The Reserve Bank of India has launched Mission Saksham for capacity building on the urban cooperative banking sector. It aims to enhance managerial and operational capabilities, improve compliance culture, and strengthen institutional resilience across UCBs. We have more from our Mumbai correspondent.
Mission Saksham is a mission mode, sector-wide and all-India capacity-building training initiative for UCBs, under which the RBI will conduct a large number of training programs, both in person and through e-learning courses, covering about 1 crore 40 lakh participants. These programs will target groups including board members, senior management, heads of risk, among others, and will also include content delivery in regional languages wherever feasible. Mission Saksham aims to establish a sustainable, self-reinforcing ecosystem for systematic stability and the healthy growth and development of the UCB sector. Ankita Apte, Akashwani News, Mumbai.
सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत विद्यार्थियों के अनिवार्य दाखिले को राष्ट्रीय मिशन बताते हुए बरकरार रखा है। न्यायालय ने कल कहा कि निजी गैर सहायता प्राप्त संस्थानों सहित नजदीकी विद्यालय पात्र विद्यार्थियों को बिना किसी देरी के दाखिला देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने कहा कि कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों को विद्यालयों में दाखिला न देना संविधान के अनुच्छेद 21 अ के तहत शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। न्यायालय ने कहा कि शिक्षा के अधिकार के तहत ऐसे विद्यार्थियों के लिए तय 25% आरक्षण में सामाजिक संरचना को सकारात्मक रूप से बदलने और समानता की भावना को बढ़ावा देने की क्षमता है। न्यायालय ने कहा कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून का प्रभावी कार्यान्वयन आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय ने लखनऊ के एक निजी स्कूल की याचिका को खारिज कर दिया। स्कूल ने शिक्षा के अधिकार कानून के तहत पात्र एक छात्रा को प्रवेश देने से इनकार किया था। उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए पीठ ने कहा कि विद्यालय सरकारी अधिकारियों द्वारा लिए गए पात्रता निर्णयों पर सवाल नहीं उठा सकते और न ही उन्हें रद्द कर सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि एक बार राज्य द्वारा चयनित विद्यार्थियों की सूची भेजे जाने के बाद विद्यालयों के पास प्रवेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में किसी तरह की रुकावट शिक्षा के अधिकार को खोखला वादा बना देगी। भारत ने इस महीने की 25 तारीख को दोपहर के समय 256 गीगावाट से अधिक की रिकॉर्ड बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि ये मांग पूरी करने के साथ साथ पड़ोसी देशों को बिजली का निर्यात जारी रखा गया। मंत्रालय के अनुसार ये उपलब्धि मई 2024 में दर्ज 250 गीगावाट के पिछले रिकॉर्ड से भी अधिक है। मंत्रालय ने बताया कि तापीय, जल विद्युत, परमाणु और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न प्रकार के उत्पादन स्रोतों के माध्यम से इस आवश्यकता को पूरा किया गया, जिससे बिजली आपूर्ति भरोसेमंद रही और ग्रिड स्थिर बना रहा। नवीकरणीय ऊर्जा, खासकर सौर ऊर्जा का इसमें बड़ा योगदान रहा, जबकि अधिक मांग के समय जल विद्युत और अन्य लचीले स्रोतों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
In a historic first, the Tathagat, holy sacred relics of Lord Buddha, will arrive today in the Union Territory of Ladakh for public exposition from 1st to 15th of next month. The holy relics are being transported by a special aircraft of the Indian Air Force with Z category equivalent security to ensure their safety. Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena, along with the other senior officials, will receive the relics at the airport. This is the first time these holy remains will leave their permanent home for an exhibition within the country. The revered relics are associated with the Piprava Stupa in Kapilavastu. These sacred relics stand as profound symbols of the Buddha's living presence and his universal teachings. This rare exposition offers a deeply spiritual opportunity to reflect, reconnect and renew citizens' collective commitment to peace within themselves and across the world, especially in times when it is most needed. The exposition will also extend to Zanskar from 11th to 12th of next month, followed by a closing ceremony in Leh on 14th of next month and departure of the sacred relics on 15th of next month.
आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच शाम 7:30 बजे से मुकाबला होगा। वहीं कल हुए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। 223 रन के जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 19 ओवर और 2 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 228 रन बनाकर मैच जीत लिया। राजस्थान रॉयल्स के लिए डोनोवन फरेरा ने नाबाद 52 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और अब रुक करते हैं महानगरों के समाचारों का।
Yes, starting with news from Chennai. The Madras High Court directed Greater Chennai Corporation and the State Health Department to conduct a comprehensive survey throughout the state within 4 weeks to identify hotspots of water stagnation and mosquito breeding. The first bench of Chief Justice Sushrut Arvind Dharmadhikari and Justice G. Arul Murugan directed GCC to ensure regular cleaning of drains, desilting of sewers and fogging operations, particularly in high-risk zones. The court added that a schedule of these activities shall be published on the official website of the corporation to ensure transparency.
और अब रुक करते हैं दिल्ली का। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 4 से 8 मई तक नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये 15वां महोत्सव इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित होगा। इस वर्ष चीन, रूस और अफ्रीका को फोकस देशों के रूप में चुना गया है। ये महोत्सव इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इसमें वैश्विक स्तर पर भारत की सांस्कृतिक विरासत को उजागर करने वाली विभिन्न फिल्में दिखाई जाएंगी। दिल्ली की एक और खबर। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि राजधानी में बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए फील्ड कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में उन्होंने निगम आयुक्त को पत्र लिखा है। पत्र में श्रीमती शर्मा ने कहा है कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक का समय कर्मचारियों के लिए सबसे अधिक जोखिम भरा होता है, इसलिए इस दौरान विशेष सावधानी बरती जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कर्मचारियों को आंशिक विश्राम दिया जाए और कार्य समय को पुनर्गठित कर सुबह जल्दी शुरू किया जाए या शिफ्ट प्रणाली लागू की जाए। श्रीमती शर्मा ने कहा कि कार्यस्थलों पर ठंडे पेयजल, छायादार विश्राम स्थल और नियमित ब्रेक की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए आवश्यक जागरूकता और प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की अपील की।
Getting to Bengaluru now, Karnataka Soaps and Detergents Limited, KSDL, has achieved a major milestone by recording a turnover of ₹2016 crore and a profit of ₹507 crore in the financial year 2025-26. Karnataka Large and Medium Industries Minister M.B. Patil called this a historic achievement and honoured the company's staff at a special event in Mysuru. The minister noted that while it took the company 105 years to reach ₹1,000 crore in turnover, it doubled that to ₹2,000 crore in just 4 years. The turnover has grown from ₹1,375 crore in 2022-23 to ₹2,016 crore now.
Ab Mumbai, Maharashtra ki khabar. महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने मंगलवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि मुंबई के अनुशक्ति नगर इलाके में अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए प्रस्तावित इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए। ये निर्देश अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं और जैन अल्पसंख्यक आर्थिक विकास निगम के कामकाज की समीक्षा बैठक के दौरान दिया गया। श्रीमती पवार ने शैक्षिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और अल्पसंख्यक युवाओं के लिए कौशल आधारित रोजगार उन्मुख पहलों को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने निगम की कार्य क्षमता में सुधार के लिए एक पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक की नियुक्ति की भी घोषणा की और अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से शुरू की गई पहलों के लिए सरकारी सहयोग का आश्वासन दिया। महाराष्ट्र की एक और खबर। महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने मंगलवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों को निजी विश्वविद्यालयों में बदलने के लिए एक नीति तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य संस्थानों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बहु विषयक शिक्षा को बढ़ावा देना है। पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के उपाध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन की अध्यक्षता वाली ये समिति पात्रता मानदंड तैयार करेगी, कानूनी प्रावधानों की जांच करेगी और कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों के लिए सुरक्षा उपायों का सुझाव देगी। समिति से 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।
Going to Hyderabad now, the Office of the Director of Government Examinations, Telangana, has officially announced that the results for the SSC public examinations held in March 2026 may be declared this afternoon at 2 p.m. Students can view their marks through official portals such as results.bsetelangana.org and schooledu.telangana.gov.in. Additionally, a new digital convenience has been introduced through Me Seva WhatsApp, allowing candidates to access their results by sending a message to 809-695-8096. This streamlined digital approach aims to provide quick and easy access for students across the state.
महानगरों के मौसम का हाल जानते हैं। सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में आज बादल गरजने के साथ बारिश होने की संभावना है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में आज आसमान साफ रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में आज गरज के साथ बौछारें पड़ने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं सुभद्रा से।
Yes, Manoj, Chennai is expected to have thunderstorm with rain. The minimum temperature will be around 27 degrees Celsius, maximum will be around 38. Bengaluru is expected to have generally rain or thunder showers towards afternoon or evening. The minimum temperature is expected to be 23 degrees Celsius, maximum will be around 36 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with possibility of rain or thunderstorm or dust storm. The temperature will hover between a minimum of 28 degrees Celsius and maximum of 41 degrees Celsius.
और अब बात करते हैं इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की। आज 29 अप्रैल है। देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 1997 में आज ही के दिन रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लागू हुआ।
I am going back in time. 1429, French national heroine Joan of Arc and her troops entered the besieged city of Orleans during the Hundred Years' War. And 1770, British explorer James Cook made his first landing in Australia at Botany Bay. And 1858, the first edition of Peter Rodgers' Thesaurus published.
और 2007 में आज ही के दिन ऑस्ट्रेलिया ने लगातार तीसरी बार क्रिकेट विश्व कप जीता। 2008 में आज ही के दिन ईरान के राष्ट्रपति महमूद अहमदी नेजाद एक संक्षिप्त यात्रा पर भारत आए।
And 1958, the Broadway musical My Fair Lady opens for its first night in London with Rex Harrison as Professor Higgins, Julie Andrews playing Eliza Doolittle. Tickets for the show cost just over £1. The first month is sold out before opening night. Another musical news here. 1968, the musical Hair goes to Broadway. As a portrait of the 1960s hippie counterculture, it was highly controversial at that time. Some of the music songs became anthems of the peace movement during the Vietnam War.
2010 में आज ही के दिन भारत ने दुश्मनों के रेडार की पकड़ में नहीं आने वाले मुंबई की मझगांव गोदी में निर्मित आधुनिकतम उपकरणों से लैस युद्धपोत INS शिवालिक को नौसेना में शामिल किया। और 2010 में आज ही के दिन भारतीय इंजीनियर हरपाल कुमार ने लंदन में आंत में कैंसर के शिकार लोगों का ब्लड टेस्ट कर रोग का पता लगाने के बजाय उनके पेट का निरीक्षण कर सकने वाले कैमरे का आविष्कार किया। इससे इस बीमारी के समय से पहले ही पहचान की जा सकेगी और 43% रोगियों को मृत्यु से बचाया जा सकेगा। और अब बात करते हैं उन महान विभूतियों की जिनका आज जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है।
Yes, one for those folks, friends who love suspense combined with humor, it's time to remember the great Alfred Hitchcock, English-born American motion picture director whose suspenseful films and television programs won immense popularity and critical acclaim over a long and tremendously productive career. His thrillers included Rebecca, Family Plot, North by Northwest, To Catch a Thief, Stranger on a Train, Birds, and the best of all, Psycho, that can give you goosebumps even today. Born in London, England, August 13, 1899, Hitchcock passed away this day in 1980 in Los Angeles, California. And also happy birthday to a renowned global icon, conductor of Western classical music, born in Mumbai this day in 1936. Born to the Baton, aptly described the extraordinary career of Zubin Mehta. Maestro Mehta has served as musical director of the New York Philharmonic, the Los Angeles Philharmonic, the Montreal Symphony and the Israel Philharmonic, to name a few. Zubin grew up in a home filled with music. Father was a co-founder of the Bombay Symphony, and the young Zubin learned to sing what he heard before he could read music. And at the age of 16, Mehta began conducting concerto accompaniments, leading to orchestra when his father was away on concert tours. And at 18, Mehta gave up his medical studies to pursue a career in music at the Academy of Music in Vienna. You're listening to Tchaikovsky's Symphony No. 4 by Berlin Philharmonic Orchestra, conducted by Zubin Mehta.
आज पुण्यतिथि है केदार शर्मा की। उनका जन्म 12 अप्रैल 1910 को पंजाब में हुआ था। वे भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक और हिंदी फिल्मों के गीतकार थे। उन्हें बॉलीवुड में ऐसे फिल्मकार के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने राज कपूर, भारत भूषण, मधुबाला, माला सिन्हा और तनुजा को फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। केदार शर्मा ने कई फिल्मों में अपने अभिनय से भी दर्शकों का दिल जीता। इन फिल्मों में इनकलाब, पुजारिन, विद्यापति, बड़ी दीदी, नेकी और बदी शामिल हैं। आइए सुनते हैं उनके लिखे कुछ गीतों को।
सोने का बंगला, चंदन का जंगला, सोने का बंगला, चंदन का जंगला, विश्वकर्मा के द्वारा।
कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी।
एंड फ्रेंड्स, country music icon Willie Nelson celebrates his 93rd birthday today. A unique and versatile artist, his innovative songwriting has resulted in number one hits for dozens of artists and for himself too. Willie Nelson started out as a performer at age 10 after receiving guitar lessons from his grandfather, which only means that his incredible musician has been at it for 83 long years. He served in the US Air Force before becoming a disc jockey in Texas, Oregon and California during the 1950s. And friends, his style of country is tinged with blues and sometimes jazz with inventive guitar lines. Multiple Grammy winner, Nelson was inducted into the Country Music Hall of Fame in 1993, followed by several awards and honors in the following years into his 90s. Nelson continues to record, tour and engage with fans, solidifying his legacy as one of the most enduring and beloved figures in country music history. Just Breathe playing in the background with his son Lucas singing along with him. Here goes.
Stay with me, oh, let's just breathe. Practiced are my sins, never gonna let me win.
under everything, just another human being. Oh.
और अब एक काव्य रचना, मछली मछली कितना पानी, जरा बता दो आज, देखूं कितने गहरे में है मेरा जीर्ण जहाज, मन की मछली डुबकी खाकर कह दो कितना जल है, कितने नीचे कितने गहरे, कहां थाह का थल है, पंकिल थल सुनील जल, हिलमिल हुए कहां है एक, मछली मछली मुझे बता दो कहां थाह की रेख, कई बार तल से टकराया फिर भी पता ना पाया, ज्यों ही बैठा त्यों ही उफना कर फिर से उतराया, जल निधि के उलीचने को टपकाए बिंदु अनेक, किंतु टिटिहरी का धीरज टूटा अथाह जल देख, अब तुमसे कहता हूं मुझको जरा बता दो मीन, कितने नीचे तल की भूमि सिमटती है संकीर्ण। ये काव्य रचना बाल कृष्ण नवीन की है, उनकी आज पुण्यतिथि है। उनका जन्म 8 दिसंबर 1897 को भयाना ग्राम ग्वालियर में हुआ था। वे हिंदी जगत के कवि, गद्यकार और अद्वितीय वक्ता थे। आपकी मुख्य रचनाएं अपलक, क्वासी, उर्मिला, कुमकुम, रश्मि रेखा आदि है। आपको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
मिशेल फाइफर, हॉलीवुड एक्टर, सेलिब्रेट्स अ बर्थडे टुडे। And today is also the birthday of Hollywood actress Uma Thurman, born in Boston, Massachusetts, this April day in 1970. And friends, over now to American musical icon who defined jazz big band. His influence on classical music, popular music and of course jazz simply cannot be overstated. Tributes to band leader, pianist Duke Ellington. He was primarily an instrumental composer. Most of his songs were originally written as instrumental piece.
आज पुण्यतिथि है साहबजादे इरफान अली खान की। उनका जन्म 7 जनवरी 1967 को टोंक, राजस्थान में हुआ था। वे भारतीय हिंदी सिनेमा और टेलीविजन के प्रसिद्ध अभिनेता थे। इरफान खान के बारे में कहा जाता है कि वे अपनी आंखों से ही सारा अभिनय कर देते थे। हासिल फिल्म के लिए उन्हें वर्ष 2004 का फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इरफान खान का नाम हॉलीवुड में भी अपनी पहचान रखते हैं। वर्ष 2011 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
ने जो कुछ कहा सब सुना मैंने। बहुत गलत सोचता था मैं कि तुम अब बड़े आदमी बन गए होगे तो सब कुछ भूल भा गए होगे।
मैं भूल गया, कितना ढूंढा तुम्हें लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। लेकिन तुम तो मेरा पता मालूम कर सकते थे। एक बार भी मन नहीं हुआ मुझसे मिलने का।
गांव से भागा तो बहुत मुश्किल है, हाथ खाली, सर पर जिम्मेदारी, नया बसेरा, अनजान जगह, ये घर कारोबार खड़ा करते करते बहुत समय गुजर गया यार। और फिर तो इतनी तेजी से ऊपर गया कि मैं आजकल करता रहा, लेकिन तू बहुत आगे निकल गया यार। फिर मेरा हौसला टूट गया।
कब से उसको ढूंढता हूं।
And friends, from the movie Life of Pi, here's a dialogue by Irfan Khan.
I suppose in the end, the whole of life becomes an act of letting go. But what always hurts the most is not taking a moment to say goodbye. I was never able to thank my father for all I learned from him. To tell him without his lessons, I would never have survived.
और आज जयंती है अल्लाह रखा खां की। उनका जन्म 29 अप्रैल 1919 को फगवाल, जम्मू में हुआ था। वे सुविख्यात तबला वादक, भारत के सर्वश्रेष्ठ एकल और संगीत वादकों में से एक थे। उनका पूरा नाम कुरैशी अल्लाह रखा खां है। अल्लाह रखा खां अपने को पंजाब घराने का मानते थे। आपको पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
Birthday of Andre Agassi, tennis legend who won 8 Grand Slam titles as well as the career Grand Slam for winning each of the 4 major tennis tournaments. That is Wimbledon, the Australian Open, the French Open and the US Open at least once. Also birthday wishes to Ashish Nehra, Indian cricket coach, former cricketer who played in all formats of the game.
और अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है, तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे। नमस्कार।